रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत के लिए कोई समय सीमा न होने के हिसाब से भ्रष्टाचार निवारण आयन 2059 में संशोधन करने के लिए बने विधेयक राज्य व्यवस्था समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की राजनीतिक रिपोर्ट को सचिवालय की बैठक में दे दी गई मंजूरी। दैलेख में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की खोज अंतिम चरण में। और ट्यूनिशिया में दो नाव पलटने से 28 प्रवासियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने भ्रष्टाचार निवारण आयन 2059 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया है। समिति की आज की बैठक में सभापति रामहरि खतिवड़ा ने विधेयक संशोधन प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। सभापति खतिवाड़ा ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत के लिए कोई समय सीमा नहीं हो, इसके लिए विधेयक पारित किया गया है। इससे पहले समिति के सदस्य हृदयराम थानी की अध्यक्षता में उप समिति द्वारा समिति को सौंपी गई रिपोर्ट पर चर्चा हुई और विधेयक पर चर्चा कर सहमति जताते हुए रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। चर्चा में उठे मुद्दों पर जवाब देते हुए गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सुशासन सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री लेखक ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सरकार की मदद करने का भी आग्रह किया। नेकपा एमाले के आज हुई केंद्रीय सचिवालय बैठक ने इसी पूस 21 गते से होने वाली पार्टी केंद्रीय कमेटी बैठक में पेश होने वाले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित किया है। पार्टी केंद्रीय कार्यालय च्यासल में हुई सचिवालय बैठक ने पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से केंद्रीय कमेटी में पेश किए जाने वाले राजनीतिक प्रतिवेदन के ऊपर विमर्श कर पारित किया। ये जानकारी नेकपा एमाले के उप महासचिव प्रदीप ग्यवाली ने दी। नेकपा एमाले की केंद्रीय कमेटी की बैठक इसी पूस 21 और 22 गते पार्टी केंद्रीय कार्यालय में बुलाई गई है। स्कूलों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए विद्यालय स्वास्थ्य दूत नियुक्त किया जाएगा। अब जिन स्कूलों में स्कूल नर्सिंग कार्यक्रम लागू है, वहां कक्षा 7 और 8 में पढ़ने वाले छात्र स्कूल नर्स को स्वास्थ्य दूत के रूप में स्वास्थ्य जानकारी और स्वास्थ्य जागरूकता जानकारी फैलाने में मदद करेंगे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने कहा कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा और नर्सिंग कार्यक्रम प्रबंध निर्देशिका को संशोधित किया है और नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। इसी तरह मंत्रालय ने नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों में स्कूल स्वास्थ्य दूतों का उपयोग करने के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। मंत्रालय स्कूल स्वास्थ्य दूतों को परिचय और बैच के अलावा आवश्यक स्वास्थ्य सूचना सामग्री भेजेगा। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के सभी 7 प्रदेशों के 1386 स्कूलों में लागू किया जा रहा है। 500 विद्यार्थियों वाले स्कूल में एक लड़का और एक लड़की स्वास्थ्य दूत बनेंगे। प्रवक्ता डॉ. प्रकाश बुढ़ा थोकी ने बताया कि मंत्रालय इस साल प्रयोग के तौर पर लागू करेगा और अगले साल के बजट में इसकी व्यवस्था कर कार्यक्रम को और भी प्रभावकारी बनाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। प्रदेश के अति विपन्न तथा सीमांतकृत समुदाय की बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश शिक्षा निर्देशालय के मुताबिक राज्य की दलित, मुस्लिम, गरीब और जहंदार लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने कहा कि सीमांतकृत तथा विपन्न परिवारों के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित न रहें, इसी उद्देश्य से छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। 111 मेगावाट क्षमता वाली रसुआगढ़ी जल विद्युत परियोजना ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। चिमिले के सहायक कंपनी रसुआगढ़ी जल विद्युत कंपनी लिमिटेड ने संपूर्ण प्राविधिक परीक्षण लगायत के काम संपन्न कर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है और इसे राष्ट्रीय प्रणाली से जोड़ा है। सरकार ने 12 निर्माण कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सार्वजनिक खरीद निगरानी कार्यालय ने आज एक नोटिस जारी कर कहा कि कार्यालय के निर्णय के अनुसार उन कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सूचना में सार्वजनिक खरीद आयन के अनुसार 12 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। सार्वजनिक खरीद निगरानी कार्यालय ने सूचना में उल्लेख किया है कि काली सूची में डाले गए निर्माण व्यवसायी और आपूर्तिकर्ता 1 से 3 साल तक किसी भी खरीद प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। दैलेख में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की खोज का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए लगभग 4000 मीटर की ड्रिलिंग में से केवल अब 49 मीटर की ड्रिलिंग का काम ही बाकी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि आधुनिक और समृद्ध नेपाल निर्माण के लिए संस्कृत शिक्षा का उन्नयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुए नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय का 77वें सभा बैठक में संबोधन करते हुए कुलपति ओली ने कहा कि संस्कृत से समाज का विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है, इसलिए विज्ञान के साथ जोड़ते हुए इसके संरक्षण, खोज और अनुसंधान पर सरकार ध्यान देगी। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि पोखरा और भैरहवा के विमानस्थल नियमित संचालन के लिए पहल किया जा रहा है। आज प्रतिनिधि सभा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन समिति की बैठक में मंत्री पांडे ने कहा कि पर्यटन संस्कृति नीति अंतिम चरण में है और नागरिक उड्डयन संबंधी विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा पास किया जा चुका है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने नुआकोट स्थित सेरा दरबार के जमीन के संबंध में कानून विपरीत है तो वापस लाने के लिए सरकार को आग्रह किया है। आज प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की बैठक में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि सेरा दरबार के जमीन के बारे में कानून विपरीत काम हुआ है तो वापस लाने के लिए मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि सेरा दरबार के जमीन के संबंध में गंभीर जांच और अनुसंधान भी होगी। नेपाल की प्रथम महिला राजदूत बिंदेश्वरी शाह का 92 वर्ष के उम्र में आज निधन हो गया है। पूर्व राजदूत स्वर्गीय शाह के निधन से राष्ट्रपति डॉ आरजू राणा देउबा ने काठमांडू के कालीमाटी स्थित निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पण की। काठमांडू में आज दोपहर 1:02 पर भूकंप का धक्का महसूस किया गया है। सिंधुपालचौक के मांझीटार केंद्र बनाकर 4.8 मैग्नीट्यूड का परकंप हुआ है, ये जानकारी राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र ने दी। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने संविधान विज्ञ शहीद का आयोग बनाकर संविधान संशोधन करना चाहिए। आज अवधि पत्रकार संघ नेपाल द्वारा नेपालगंज में आयोजित सम्मेलन में अध्यक्ष यादव ने कहा कि सभी को अपनत्व लेने के हिसाब से संघीयता, गणतंत्र और समावेशिता को मजबूत बनाने के हिसाब से सभी की सहमति और समन्वय से ही संशोधन किया जाना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ट्यूनिशिया के तट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। तट पर नाव डूबने के चलते कम से कम 28 प्रवासियों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग लापता है। सीएनएन ने इतालवी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया है कि प्रवासी इटली के लिए भूमध्य सागर पार करने का प्रयास कर रहे थे। इतालवी तट रक्षक ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने पिछले 48 घंटों में संकटग्रस्त 58 नावों से 3,300 लोगों को बचाने का काम किया है। ज्यादातर रेस्क्यू उन नावों पर किए गए जो ट्यूनिशिया के लैम्पेडुसा जा रही थी, जो अफ्रीका के सबसे नजदीकी इतालवी द्वीप है। नवीनतम आपदा अनिर्दिष्ट उप सहारा अफ्रीकियों की ट्यूनिशियाई अधिकारियों द्वारा की जा रही गिरफ्तारी के बीच आई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत के लिए कोई समय सीमा न होने के हिसाब से भ्रष्टाचार निवारण आयन 2059 में संशोधन करने के लिए बने विधेयक राज्य व्यवस्था समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की राजनीतिक रिपोर्ट को सचिवालय की बैठक में दे दी गई मंजूरी। दैलेख में पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की खोज अंतिम चरण में और ट्यूनिशिया में दो नाव पलटने से 28 प्रवासियों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।